समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनोज सिंह राणा। मनोज, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो एंड नमस्कार टू यू आकर्षिता, एंड नमस्कार टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम मनोज सिंह राणा एंड विद मी इज, एज आई हैव जस्ट मेंशन्ड, माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड डियर लिसनर्स, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज। वी हैव अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, वी हैव रिपोर्ट्स, वी हैव कैप्सूल्स, वी हैव ट्रिब्यूट्स and much more, and all these over the next 30 minutes. We begin with the news headline first. Akashita?
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
Prime Minister says sacred relics of Buddha are not merely artifacts but part of our revered heritage.
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ दो अलग अलग मुठभेड़ों में 14 माओवादी ढेर।
इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स ऑटोमेटिक इंक्लूजन ऑफ बिरहोर, टोटो एंड शाबार ट्राइब्स इन वेस्ट बंगाल वोटर्स लिस्ट।
अमेरिका के कथित हमलों के बाद वेनेजुएला ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया।
बीसीसीआई आस्क्स कोलकाता नाइट राइडर्स टू रिलीज बांग्लादेश पेसर मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम इट्स स्क्वाड अहेड ऑफ आईपीएल 2026।
और मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया।
एंड नाउ टाइम फॉर आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, इन व्हिच लिसनर्स वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और ग्लोबल लेवल। टुडे वी विल टॉक अबाउट शब्दोत्सव 2026। British author C.S. Lewis once said, and I quote, "You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me," unquote. Well, listeners, we have Shabdotsav 2026. And long before microphones and stages, India spoke through Gurukuls and libraries, through Takshila's thinkers, through Nalanda's scholars, whose voices never faded. They only waited for new listeners. And today, Delhi becomes that listener as Delhi Shabdotsav 2026 unfolds.
जी हाँ, दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आगाज हो चुका है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली सरकार के इस पहले साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव में विचारों के नाम कई मंच हैं। 3 दिन के इस महोत्सव में 100 से ज्यादा स्पीकर्स पहुंच रहे हैं, 40 से ज्यादा पुस्तकों का विमोचन होगा, 6 सांस्कृतिक कार्यक्रम और 2 कवि सम्मेलन रखे जा रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और दिल्ली का जायका भी यहाँ परोसा जा रहा है और हर राज्य से यहाँ लोक कलाकारों की टोली भी पहुँच रही है। तो मनोज, हम अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि वो जरूर जाएं क्योंकि टिकट्स भी फ्री हैं और आपको बहुत ढेर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। अपनी जड़ों से आपको फिर से जुड़ाव महसूस होगा और अगर आप अच्छे राइटर हैं या आपको किताबें पढ़ना पसंद है या आपको सांस्कृतिक संगीत पसंद है तो आपको जरूर जाना चाहिए।
That's right, Akarshita. And all those who are planning to visit Delhi this new year or are already around Delhi must certainly pay a visit to Delhi Shabdotsav. As this Shabdotsav brings together not just literature but culture and intellectual discourse on a single platform, it brings together over 100 voices, authors who shape thought, filmmakers who shape perception, thinkers, journalists, legal minds, youth icons, and in fact, book discussions as well. If you're interested in books, if you're interested in classical dance, there are classical dance performances as well that remind us how discipline turns into grace.
और अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, भजन और ओपन माइक और लोक संगीतियों की भी प्रस्तुतियां की जा रही हैं और संगीत संध्या में बहुत ढेर सारे ऐसे नामी गिरामी लोग भी आ रहे हैं, जैसे हंसराज रघुवंशी जी हो गए, हर्षदीप कौर हो गए. तो ये जो दिल्ली शब्दोत्सव, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग होने वाला है मनोज, क्योंकि एक ही मंच पे इतनी ढेर सारी प्रस्तुतियां, इतने ढेर सारे ओपन माइक्स, इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स और बहुत ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियर के लिए खुद जो है सामने आ रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा पल है, सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए ही नहीं, जो लोग भी नववर्ष की मनाने के लिए दिल्ली आए हुए हैं, जो है घूमने के लिए दिल्ली आए हुए हैं, उनको भी जाना चाहिए और इस कार्यक्रम में अपना भरपूर मनोरंजन करना चाहिए.
That's right, Akash. Then many parents often also quietly worry, how do we connect our children to culture in a fast digital world? That's a question that we often ask and often debate and often discuss as well. And Delhi Shabdotsav offers an answer. And it does so not through lectures but through experience, where Bharat stories, songs and ideas come alive. Think about that for a moment. So many invasions, so many attempts to weaken our civilization, culture, education. Yet India stands again and again. Why? Because roots matter and our roots run deep. And this is what Delhi Chief Minister Rekha Gupta also said in the inauguration of Delhi Shabdotsav.
और अगर इसकी थीम की बात करें तो एक ही विचार के अंतर्गत यही है भारत अभ्युदय, एक उभरता हुआ भारत, एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास, रचनात्मक और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है.
और एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी, वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है. और यही कारण है कि अनेकों बार भारत पे हमले हुए, भारत पे प्रहार हुए, पर भारत फिर से खड़ा हो पाया. वो किसी कवि ने कही है ना कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा.
क्या बात है. तो ये भारत जो है ये इतना सशक्त है, आज का भारत इतना आत्मनिर्भर है कि हमारी सच में जो हमने एक अपना एक स्थान बनाया हुआ है एक विश्व में, वो बहुत बड़ी बात है. और अगर इस महोत्सव की बात करें तो ये महोत्सव भविष्य उन्मुखी भारत को दर्शाता है और आने वाले कल के प्रति आश्वस्त, बीते हुए कल के प्रति निश्चिंत. और ये तो बस शुरुआत है मनोज.
That's right. And as the Delhi Chief Minister also made it very clear that this is the first edition, it will return every year bigger, stronger and even louder. In fact, it also witnessed the presence of State Minister Kapil Sharma, who added another layer to the story. And he also talked at length about the rich Indian cultural heritage, which is also present in Delhi, from Chhat celebrations to Grand Diwali to Kartavya Path, from Kavad Yatra to Navratri at Delhi University, from Garba and Dandiya to everything that emerges in this cultural city of Delhi.
जी हाँ, दिल्ली को न केवल एक राजनीतिक राजधानी के रूप में बल्कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी आकार दिया जा रहा है.
और यहाँ पर आने वाले दिनों में भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर, भारत के असली इतिहास के मुद्दे पर, नैरेटिव के बहुत सारे विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी. और यहां तक कि जैन जी की आप यहां पर भागीदारी देख सकते हैं, हजारों युवा यहां पर आया हुआ है. यहां पे भजन क्लबिंग के इवेंट हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं. और कुल मिलाकर इस प्रकार के आयोजन को हम ये संकल्प के साथ कर रहे हैं कि हर साल दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन मिलकर भव्य आयोजन दिल्ली शब्दोत्सव का करेगी.
इस महोत्सव के दौरान 5 विशेष मंच, मुख्य मंच, सांस्कृतिक मंच, साहित्यिक मंच, ओपन माइक और पैनल मंच सजे हैं. पहले दिन नीतिगत चर्चाओं के साथ साथ कविता, संगीत और कलात्मक प्रस्तुतियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिला.
एंड आकर्षिता, क्वेश्चन दैट वी जनरली आस्क इज, व्हाट आर वी कैरिंग बैक होम व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम दिस फेस्टिवल? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज अ बुक अंडर द आर्म, अ ट्यून इन द हेड, अ थॉट इन द हार्ट, and a quiet pride.
क्योंकि शब्दोत्सव कोई एक आयोजन नहीं है, ये एक जीवंत क्षण है, आत्मनिर्भर भारत की झलक, एक ऐसा भारत जो अपनी जड़ों को जानता है और ये भी जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। संस्कृति कोई किताब में बंद अध्याय नहीं होती, वो हमारे बोलने के तरीके में होती है, हम जिस तरीके से त्योहार मनाते हैं, जिस तरीके से आप कहानियां सुनते हैं या जिस तरीके से अपनी कलाएं हैं उसको जो है निखारते हैं, संस्कृति सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां जो हमारी संस्कृति से जुड़ी रहें, जो संस्कृति की जड़ें हैं वो मजबूत बनी रहें, इसलिए ऐसे उत्सवों का आयोजन जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। मनोज,
That's right. And when a society preserves its culture, it doesn't just preserve its past, it strengthens its future. So these festivals also become a mode in which we preserve our rich heritage and culture.
और भारत की संस्कृति समय से भी पुरानी है मनोज। तक्षशिला, नालंदा से लेकर जैसा आपने बताया कि आज के साहित्यिक मंचों तक, ये देश हमेशा विचारों का घर रहा है। यहाँ शब्द सिर्फ लिखे नहीं गए, उन्हें जिया भी गया है।
That's right. And language is also another way in which we communicate. Language is not just also a means of communication, it is our identity, our soul. And when children recite their poems on stage, when families sit together and listen to stories, when music and ideas meet in the same place, then culture is not just preserved, it remains alive.
और यही कारण है कि साहित्यिक उत्सव इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि केवल किताबों के मेले नहीं होते, ये संवाद के मंच होते हैं जहां लेखक पाठक से जुड़ता है, जहां युवा अपनी बात कहता है, जहां कविता, संगीत, विचार और संस्कृति एक साथ पनपते हैं।
And in this day and age, when the world has become faster, Akarshita, when screens have replaced communication, it becomes important to pause, to think, and to recognize our roots through these festivals. Therefore, it makes all the more sense to visit these festivals to recognize and to witness the grand heritage that we have.
हमारी संस्कृति ने हमें सहनशीलता सिखाई है, ज्ञान को बांटना सिखाया है और अनेकता में भी एकता देखना सिखाया। संस्कृति को बचाना आज हम सब की जिम्मेदारी है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी वो संस्कृति मिल सके जो हमने देखी, जो हमने जी और जो हमने महसूस की। क्योंकि जब संस्कृति सुरक्षित होती है, तब राष्ट्र आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, और यही भावना आज के साहित्यिक उत्सव में दिखाई देती है। एक उभरता हुआ भारत जो आधुनिक है लेकिन अपनी सभ्यता पर गर्व करता है और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में देश भर के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्य भारत के सबसे स्वच्छ नदी वन पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल यह रिजर्व अब केवल बाघों और जंगली भैंसों का ही नहीं, बल्कि विलुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। पेश है आकाशवाणी रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला की ये रिपोर्ट।
गिद्धों को पर्यावरण का सफाई कर्मी माना जाता है। इनके बिना बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गिद्धों के अस्तित्व पर जहरीली दवाओं, असुरक्षित शव निपटान और मानव हस्तक्षेप जैसे गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट टेलीमेट्री आधारित निगरानी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। क्षेत्रीय जीव विज्ञानी सूरज कुमार के नेतृत्व में गिद्ध मित्र दल बनाया गया है। यह दल घोंसलों की निगरानी, शवों के सुरक्षित प्रबंधन और स्थानीय दायों को संरक्षण से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस इलाके में वल्चर रेस्टोरेंट की स्थापना भी की गई है। यह गिद्धों के लिए एक ऐसा भोजन स्थल है जहां केवल पशु चिकित्सा परीक्षण के बाद ही शव रखे जाते हैं। इससे गिद्धों को सुरक्षित भोजन मिल रहा है। गिद्धों के संरक्षण के लिए इनकी सैटेलाइट टैगिंग के साथ साथ 50 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा पंचायतों की भागीदारी से 100 किलोमीटर क्षेत्र में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना भी की गई है। इन सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिलने शुरू हो गए हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी हैज लॉन्च्ड अ न्यू हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नेम्ड ई शुश्रुत। developed by the Center for Development of Advanced Computing, the Government of India. The system is fully compliant with the Ayushman Bharat Digital Mission, marking a significant step forward in strengthening digital healthcare services at the Institute. We have more from our Puducherry correspondent.
A hospital information management system is a comprehensive digital platform that integrates all major hospital operations into a single secure system. From patient registration and appointment scheduling to clinical records, laboratory reports, prescriptions and billing, all information is maintained electronically, ensuring greater accuracy and easy access for authorized healthcare professionals. The new system enables seamless integration of JIPMER with the National Digital Health Infrastructure. Patients can link their Ayushman Bharat Health account, known as APHA, which serves as a unique digital identity for accessing health records across healthcare facilities in the country. The platform supports e-prescriptions, standardized electronic medical records, and consent-based sharing of health information, ensuring privacy, security, and transparency. One of the key advantages of eSusruth is its interoperability. It connects with the national registries such as Health Facility Registry and the Health Professional Registry, enabling smoother coordination between doctors, hospitals, and laboratories. This helps reduce paperwork, minimize duplication of medical tests, and improve continuity of patient care. With the introduction of the new hospital information management system, JIPMER once again reaffirms its commitment to patient-centric healthcare while embracing modern digital solutions aligned with India's National Digital Health Vision. For Parikrama, this is Bibinasnath, Akashwani News, Puducherry.
As the full moon of the Hindu month of Posh rises, the vibrant festival of Poushpuni, or Posh Purnima, fills the air with joy across western Odisha. This significant agrarian festival marks the end of the grueling monsoon labour and celebrates the successful harvest of the autumn paddy crop. It is a time when the entire community comes together to honour the land, the labour and the deep bonds that unite them. More from our Sambalpur correspondent.
The Poushpuni celebration is a grand feast for the senses. In every household, families prepare traditional delicacies such as arisa, kakara, malpua, bora and pakudi. These are not just meals but symbols of prosperity, shared freely with neighbors and friends to spread warmth and happiness. The village atmosphere becomes electric with the sound of folk music and traditional dances. People of all ages participate in indigenous games like kabaddi, guddu and gorobadi, while events like cockfights and humobawali performances keep the festive spirit high. A standout tradition of the festival is Chetchera. During this ritual, group of children go from door to door chanting and collecting grains from each house, while the children use these gifts to cook a communal meal and enjoy a day of merriment. The tradition carries a deeper social meaning. It is a community-driven way to support poor families who do not own land, ensuring that no one goes hungry during the harvest celebration. It reflects a culture where sharing resources is a duty, not just an option. Poushpuni serves as a day of dignity for agricultural laborers. Farmers show their appreciation by paying bhuti and Nistar. The word Nistar literally means freedom of liberation. For the laborers, this marked the official end of their early contact, allowing them a period of rest and the freedom to celebrate their hard work. By recognizing the contribution of every worker, Poushpuni proves to be the ultimate example of community bonding, where the joy of the harvest belongs to everyone. For Parikrama, this is Alok Chandra Bari, Akashvani, Sambalpur.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने को कहा है। कोलकाता ने पिछले महीने इस खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कोलकाता को एक प्रतिस्थापन खिलाड़ी का नाम देने की अनुमति होगी।
In cricket, under 19, India were 268 for 7 in 47.2 overs against host South Africa in the first youth ODI of the three-match series at the Willowmore Park in Benoni when reports last came in. Earlier, South Africa won the toss and elected to field first. Vaibhav Suryavanshi is leading the Indian team in the series.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember the first female teacher in modern India, Savitribai Phule, who was born on the 3rd of January 1831 in Naigaon, a small village in Maharashtra. Her life is heralded as a beacon of women's rights in India. She's often referred to as the mother of Indian feminism.
As a young girl, Savitri Bai displayed a strong sense of curiosity and ambition. However, she was married at the mere age of 9 years to Jyoti Rao Phule in 1840. Impressed by her enthusiasm to learn, Jyoti Rao taught Savitri Bai to read and write. She undertook teacher's training and became a qualified teacher in 1847. Determined to change the condition of women in the country, Savitri Bai, along with Jyoti Rao, opened a school for girls in Pune in 1848. She became the first female teacher of India.
Sympathizing with the plight of widows in the country, Savitri Bai also established a shelter for destitute women in 1864.
Savitri Bai was instrumental in shaping Satya Shodhak Samaj, established by Mahatma Jyotiba Phule. In 1873, Savitri Bai started the practice of Satya Shodhak marriage, where couples took an oath of education and equality. In 1890, Jyoti Rao passed away. Defying all social norms, Savitri Bai lit his funeral pyre. She carried on Jyoti Rao's legacy and took over the reins of Satya Shodhak Samaj.
When the bubonic plague spread across Maharashtra in the 1890s, Savitri Bai opened a clinic for the plague victims in Hadapsar, Pune. And it was while carrying a 10-year-old plague victim to the clinic in her arms, she contracted the disease herself. On the 10th of March, 1897, Savitri Bai Phule breathed her last.
We salute the great Indian reformer.
We also remember freedom fighter Veera Pandya Kattabomman, who was born on the 3rd of January 1760 in Thoothukudi district of Tamil Nadu. Veera Pandya's father, Jagaveera Kattabomman, was a Palayakarar, a governor appointed by the Nayaka dynasty, from whom Veera Pandya assumed the position of the 47th Palayakarar when he turned 30.
The British East India Company got rights to collect taxes from all the Palayakarars under the Nawab of Arcot's domain. Except for Veera Pandya, every other Palayakarar yielded to the diktat of the company. The British Army decided to attack Veera Pandya in 1799. However, Veera Pandya got the news about the attack through his informers and had prepared well in advance. Veera Pandya and his men held the fort valiantly against British troops. Later, the British, with the help from the king of the nearby kingdom of Pudukottai, arrested Veera Pandya in 1799. He was sentenced to public execution. Veera Pandya Kattabomman was martyred on October the 16th, 1799. We salute the great freedom fighter.
आज प्रसिद्ध वैज्ञानिक सतीश धवन की पुण्यतिथि है। देश में अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे इसरो के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। प्रोफेसर धवन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई सकारात्मक बदलाव किए। उन्होंने संस्थान में अपने देश के अलावा विदेशों से भी युवा प्रतिभाओं को शामिल किया। उन्होंने कई नए विभाग की भी शुरुआत की और छात्रों को विविध क्षेत्रों में शोध के लिए प्रेरित किया। सतीश धवन के प्रयासों से ही संचार उपग्रह इनसेट, दूर संवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV का सपना साकार हो पाया। उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1999 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Right, he served as the chairman of the Indian Space Research Organization, or ISRO, from 1972 to 1984 and is often regarded as the father of experimental fluid dynamics research in India. In fact, his work resulted in operational systems including INSAT, IRS, PSLV, which established India as a space-faring country. It is interesting to note, Akashita, that while Satish Dhawan was a chairman of ISRO from 1972 to 1984. Another person, Dr. Brahma Prakash, who also passed away on this day, worked with Dr. Satish Dhawan with ISRO from 1972 to 1979.
और सन 1957 से 1972 तक प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों से करीबी से जुड़े रहे। उनकी टीम ने 1959 में कनाडा भारत रिएक्टर साइरस के लिए ईंधन निर्माण सुविधा की शुरुआत की।
एंड लेट्स टॉक अबाउट द पीपल हु वर बोर्न टुडे एंड द फर्स्ट पर्सन दैट वी हैव इज संजय खान और पॉपुलर और नोन एज Shah Abbas Ali Khan, who was born on this day in Bengaluru, which was then known as Bangalore, in 1940. Known as the golden boy of Bollywood, Sanjay Khan made his debut in Chetan Anand's 1964 war film, Haqeeqat, in a small role as a soldier. Later that year, he played a pivotal supporting role in the big blockbuster film, Dosti. He went on to star in hit films like Das Laak in 1966, Ek Phool Do Maali in 1969, Intiqam in 1969, Shart in 1969, Mela in 1971, Upasna, Dhun and Nagin. He shifted his focus on television in the late 1980s, directing the starring in the big-budget historical television drama series The Sword of Tipu Sultan. He also went on to produce and direct several other programs like The Great Maratha and Jai Hanuman and 1857 Kranti. Let's listen to a song from one of his movies.
Ye parda hata do, zara mukhda dikha do. Ye parda hata do, zara mukhda dikha do. Hum pyar karne wale hain, koi gair nahi. अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं।
आज जयंती है प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक चेतन आनंद की। वे मशहूर अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे। 1950 के दशक के शुरू में उन्होंने अपने छोटे भाई और जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शंस के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस बैनर ने बॉलीवुड को अप्सरा, टैक्सी ड्राइवर और आंधिया जैसी फिल्में दी। बाद में चेतन ने हिमालय फिल्म्स नाम से अपनी अलग कंपनी शुरू की। इस बैनर ने हिंदी सिनेमा को हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी अच्छी फिल्में दी। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत हाथों की लकीर फिल्मों में चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को अंजाम दिया। उन्होंने वर्ष 1988 में परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक भी बनाया। उन्हें वर्ष 1946 में फिल्म नीचा नगर के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया। 1965 में उन्हें फिल्म हकीकत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों का एक ही।
हमने तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते।
English writer, scholar and philologist John Ronald Roland Tolkien, or popularly known as J.R.R. Tolkien, was born on this day in 1892 in Bloemfontein, South Africa. He was a twice professor of Anglo-Saxon Old English at the University of Oxford. His exploration of fantasy also entails an experimentation with the language. He has achieved fame with his children's book, The Hobbit, and his rich inventive epic fantasy, The Lord of the Rings, both of which have been adapted into blockbuster Hollywood movies. Let us hear this audio excerpt from The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring.
Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world. Believed lost for centuries, it has now been found.
आज प्रसिद्ध वायलिन एमएस गोपाल कृष्णन, वायलिन वादक एमएस गोपाल कृष्णन की पुण्यतिथि है। पद्म भूषण तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित गोपाल कृष्णन ने 7 दशक तक वायलिन के शुरू से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रेमियों को बांधे रखा। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और मनोज को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।